ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज आम बजट 2026-27 को मंजूरी दे दी तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य आसमान छूने के मद्देनजर दो टूक शब्दों में कहा कि भारत में लॉकडाउन की कोई गुंजाइश नहीं है तथा इसे लेकर गलतफहमी नहीं फैलाई जानी चाहिए। राज्यसभा ने वित्त मंत्री के जवाब के बाद वित्त विधेयक को ध्वनि मत से लौटा दिया। इसी के साथ उच्च सदन ने अनुदान की अनुपूरक मांग और उससे जुड़े विनियोग विधेयक को भी ध्वनि मत से लौटा दिया। लोकसभा इन्हें पहले ही मंजूरी दे चुकी है। राज्यसभा में वित्त मंत्री सीतारामन ने वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि देश को विकसित बनाने और 140 करोड़ भारतीय नागरिकों के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने यह प्रश्न किया कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद कर घटाए जाने के बाद सरकार 2026 वित्त वर्ष में 4.3% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को कैसे हासिल करेगी। इसका जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के कुल राजस्व में उत्पाद शुल्क से होने वाले राजस्व का योगदान करीब 10% होता है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि अतिरिक्त साधनों को जुटाना, विकास को बढ़ावा देने वाले व्यय को प्राथमिकता देना, कल्याणकारी व्यय को बेहतर तरीके से लक्षित करना तथा राजकोषीय कामकाज में अधिक पारदर्शिता रखना सरकार की महत्वपूर्ण पहचान रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनका पालन करते हुए सरकार राजकोषीय रुख को कायम रख पाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि गैर कर राजस्व के माध्यम से अधिक कोष एकत्र करके भी इसकी भरपाई कर ली जाएगी। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि सरकार इस स्थिति का सामना कर लेगी क्योंकि हम काफी सतर्क हैं। उन्होंने ध्यान दिलाया कि विश्वभर में पश्चिम एशिया संकट के बाद विभिन्न देशों में तेल के दाम 30-50% बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में रूस और यूक्रेन संघर्ष के बाद कच्चे तेल और उर्वरकों के दामों पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें पेट्रोल पर लगने वाले उत्पाद कर को 13 रूपये से घटाकर 3 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल पर लगने वाले 10 रूपये प्रति लीटर कर को शून्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत में जो तेल शोधक कंपनी तेल शोधन के बाद बाहर भेज रही हैं, उन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री ने पाकिस्तान आदि पड़ोसी देशों में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का हवाला दिया। उन्होंने सरकार द्वारा गरीबों पर अधिक कर लगाने और अमीरों को इसमें राहत देने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि चाहे परोक्ष करों की बात हो या जीएसटी की बात हो, किसी में भी अमीर या गरीब के बीच भेदभाव नहीं किया गया। वित्त मंत्री ने लोकसभा में 1 फरवरी को आम बजट पेश किया था और उसी के साथ संसद में बजट पारित होने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। आज वित्त विधेयक पारित होने के साथ ये प्रक्रिया संपन्न हो गई। इससे पहले वित्त विधेयक पर चर्चा में भाजपा के सांसद संजय सेठ ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने दूरदर्शिता दिखाते हुए काफी पहले से ही जो कदम उठाए थे उसी के कारण आज देश तेल संकट झेल पा रहा है तथा डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद कर घटाकर उपभोक्ताओं पर कोई बोझ नहीं डाला गया है। उन्होंने कहा कि आज विश्व जिस अनिश्चितता से गुजर रहा है और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण ऊर्जा संकट पैदा हो गया है, ऐसे में वित्त विधेयक आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने सरकार पर अमेरिका के सामने झुकने, अव्यापार समझौता करने का आरोप लगाया तथा प्रश्न किया कि भारत का किसान प्रतिस्पर्धा में कैसे टिक पाएगा। वित्त विधेयक का विरोध करते हुए गोहिल ने कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है, बस आंकड़ों के साथ मामूली छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने आंकड़े देते हुए बताया कि जहां वर्ष दर वर्ष आयकर की दर बढ़ी है, वहीं निगमित कर में कमी हुई है, यानी अमीर को कम कर देना पड़ रहा है और आम आदमी पर ज्यादा कर लगाया जा रहा है। गोहिल ने कहा कि सरकार को कहीं भी किसान या गरीब नहीं दिखाई देता है तथा वित्त विधेयक में महिलाओं के लिए कुछ नहीं दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले ने दावा किया कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के कारण सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि नहीं कर रही है तथा 29 अप्रैल के बाद इनके दाम बढ़ाए जाएंगे। चर्चा में भाजपा के डॉ सिकंदर कुमार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की डॉ फौजिया खान, शिवसेना के प्रियंका चतुर्वेदी, तेदेपा के मस्तान राव बीधा यादव, आम आदमी पार्टी के अशोक कुमार मित्तल, वाईएसआरसीपी के एस निरंजन रेड्डी, सपा के रामजीलाल सुमन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य चौधरी मोहम्मद रमजान, बीआरएस सदस्य केआर सुरेश रेड्डी, माकपा सदस्य वी शिवदासन, अन्ना द्रमुक के एम तम्बीदुरई, बीजत के मानस रंजन मंगराज आदि ने भी हिस्सा लिया। इसके बाद सदन में विशेष उल्लेख के जरिए भाजपा के डॉ सिकंदर कुमार, तेजवीर सिंह, सुभाष बराला, कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल, बीजत के निरंजन कुमार बिशी ने लोक महत्व के जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए और फिर सदन की बैठक सोमवार 30 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर शून्यकाल हुआ, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के सांसद संजय यादव ने पहलगाम आतंकी हमले का हवाला देते हुए एयरलाइनों और निजी सेवा प्रदाताओं पर संकट के समय में दामों में वृद्धि कर मुनाफाखोरी करने का आरोप लगाया तथा सरकार से इस प्रवृत्ति पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये बार बार दोहराई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान डायनामिक प्राइसिंग के नाम पर टिकटों के दाम कई गुना बढ़ जाते हैं, राशन और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, एम्बुलेंस सेवाएं दरें बढ़ा देती हैं और ऐप आधारित कैब एग्रीगेटर सामान्य किराए से 5-6 गुना अधिक किराए तक वसूल करते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने बच्चों और युवाओं में बढ़ती डिजिटल लत का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि इसके चलते हर साल लगभग 20,000 बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस संकट समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। तृणमूल सदस्य ने यह भी उल्लेख किया कि 68 देशों ने स्कूलों में मोबाइल फोन पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है। भाजपा के लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम रेरा और दिवाला कानूनों में व्यापक संशोधन की मांग करते हुए कहा कि देश भर में हजारों घर खरीदारों ने अपनी जीवन भर की बचत खर्च कर दी, लेकिन अब तक उन्हें फ्लैट नहीं मिले, जबकि बिल्डर दिवालिया घोषित होकर जवाबदेही से बच निकलते हैं। वाजपेयी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रेरा का क्रियान्वयन पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है, हजारों परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं और कई बिल्डर खुद को दिवालिया घोषित कर कानूनी जवाबदेही से बच जाते हैं। सांसद ने कहा कि कई मामलों में फ्लैट बनने के बावजूद बिल्डरों ने सरकारी बकाया नहीं चुकाया, जिससे पंजीकरण अटक गए हैं और खरीदारों को कानूनी स्वामित्व नहीं मिल पा रहा है। भाजपा के महाराजा संजोबा लिशिम्बा ने देश के अग्रणी रंगकर्मियों में शामिल रतन थियम को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की। लिशिम्बा ने थियम को मणिपुर का एक महान सांस्कृतिक आइकॉन बताया, जिनकी चर्चित प्रस्तुतियां चक्रव्यूह, अंधा युग और ऋतु सहारम तथा भारतीय रंगमंच को वैश्विक पहचान दिलाने की बात कही। भाजपा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ बड़े कड़े केंद्रीय कानून की मांग करते हुए कहा कि मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान पर इसका असर पड़ रहा है। चुराए गए वाहनों का विभिन्न अपराधों में इस्तेमाल करने तथा सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए आम आदमी पार्टी के अशोक कुमार मित्तल ने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रौद्योगिकी की सक्रियता से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ ने देश की बढ़ती आबादी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार की बेहतरीन योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने मांग की कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कठोर कानून बनाया जाए, ताकि परिवार छोटा रहे, छोटे परिवार वालों को कर में छूट दी जाए और उन्हें अन्य राहत भी दी जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान ने दावा किया कि देश में भाषण, टीवी कार्यक्रम तथा अन्य माध्यमों से लगातार नफरत फैलाई जा रही है, जिसका निशाना अल्पसंख्यक होते हैं। शून्यकाल में ही भारतीय जनता पार्टी के नरहरि अमीन, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत और आम आदमी पार्टी के विक्रमजीत सिंह सहानी, बीजू जनता दल के सांसद सुभाषेश खुंटिया, मनोनीत सदस्य पीटी ऊषा तथा अन्ना द्रमुक के एम थम्बीदुरई ने भी आसन की अनुमति से अपने अपने मुद्दे उठाए। लोकसभा में हुई कार्यवाही के समीक्षक लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी, वाचक मुकेश कुमार।
वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने आज लोकसभा में जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक में संसद की एक समिति की सिफारिशों को शामिल किया गया है। कांग्रेस सांसद के काव्या और जी के पडवी ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। पडवी ने सरकार से विधेयक को प्रवर समिति या संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का आग्रह किया। वहीं प्रसाद ने कहा कि विधेयक पर समिति में विस्तृत विचार विमर्श किया गया है और इसमें केवल छोटे अपराधों को ही अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। मंत्री ने कहा कि ये विधेयक छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और जुर्माने तथा दंड को अपराध के अनुरूप संशोधित करने तथा अपीली प्राधिकरणों की स्थापना जैसे उपाय लागू कर व्यापार और जीवन में सुगमता को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि इसमें 23 मंत्रालयों द्वारा शासित 79 केंद्रीय कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से पूछा कि संयुक्त संसदीय समिति में विधेयक भेजे जाने के बाद क्या दोबारा उसे उसी समिति को भेजा जा सकता है। श्री रिजिजू ने कहा कि ऐसा आज तक नहीं हुआ है और ऐसा नियम में भी नहीं है। प्रसाद ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया है कि विधेयक में कैद की जगह जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि विधेयक केवल छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले वर्ष 18 मार्च को जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में पेश किया था, जिसे संसदीय समिति को भेजा गया था। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने के प्रावधान वाले 3 विधेयक पर विचार करने वाली संसदीय समिति को रिपोर्ट देने के लिए आगामी मॉनसून सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक का समय दिया गया है। इससे पहले 31 सदस्यीय संयुक्त समिति को 3 विधेयकों पर विचार करने के लिए बजट सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक का समय दिया गया था। गृहमंत्री अमित शाह ने गत मॉनसून सत्र के आखिर में विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सदन में संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। बाद में उनके प्रस्ताव पर सदन ने 3 विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया था। लोकसभा में आज दिवाला और शोधन अक्षमता संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा फिर शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर देश की अर्थव्यवस्था के बारे में गलत दावे करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये वक्त था जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री बड़े बड़े उद्योगपतियों को ऋण फोन पर दिलाया करते थे। बैंक इतने खस्ता हाल हो गए थे कि उनकी रिकवरी दर 5% से लेकर मात्र 20% तक थी। रनौत ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान बैंकों की गैर निष्पादित अस्थियां एनपीए 11.5% थीं, जो मार्च 2025 में घटकर 2.25% रह गईं। भाजपा के जगदम्बिका पाल ने भी रनौत की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि जैसा कि कंगना ने कहा है कि एक फोन बैंकिंग चल रहा था, फोन किया जाता था और उसी पर लोन मिल जाता था। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देश छोड़कर भागने वाले सारे कारोबारियों ने 2004 से 2014 के बीच संपर्क सरकार के दौरान बैंकों से कर्ज लिया था। दुबे ने कहा कि भले ही ये लोग देश छोड़कर राजग सरकार में गए हों, लेकिन उन्हें कर्ज संपर्क के समय में दिया गया था। सदन में शून्यकाल लंबे समय तक चला और अनेक सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों के तथा लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए। आम आदमी पार्टी के मालविंदर सिंह कंग ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि शादी के समय लड़कों के डोप टेस्ट और चिकित्सा जांच को अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाया जाए। समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्ला नदवी ने केंद्र सरकार से मांग की कि नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा परियोजना वाले क्षेत्र की मस्जिदों और दूसरे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का विश्वास दिलाए। भाजपा की हेमा मालिनी ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर मथुरा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार से विशेष पैकेज की मांग की। अरुणाचल प्रदेश से भाजपा सांसद तापिर गाव ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के साथ नस्लीय भेदभाव होने का आरोप लगाते हुए सरकार से इस संबंध में बेज बरुआ समिति की रिपोर्ट को लागू करने या इस तरह के मामलों की रोकथाम के लिए कानून लाने की मांग की। पंजाब के कांग्रेस सदस्य अमर सिंह ने अपने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब होने का दावा करते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के रास्ते पाकिस्तान से ड्रोन से मादक पदार्थ और हथियार पहुंचाए जाते हैं। शिवसेना के रविन्द्र वायकर ने महाराष्ट्र में समुद्र तटीय क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से तस्करों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। भाजपा की महिमा कुमारी मेवाड़ ने सहारा समूह की निवेश योजना में पूंजी लगाने वाले निवेशकों का धन लौटाए जाने की सरकार से मांग की। अभी आप संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।